ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नूनं दैवेन विहता ये च अच्युत कथासुधाम् हित्वा शृण्वन्ति असद्गाथा पुरिशम् इव विद्भुजः। अनुवाद। ऐसे व्यक्ति भगवान के परम आदेश अनुसार निंदित होते हैं, क्योंकि वे भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं। अतः उनकी तुलना विष्ठाभोजी शुक्रों से की गई है। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर भौतिकतावादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। दोहराइए, ऐसे व्यक्ति भगवान के परम आदेश अनुसार निंदित होते हैं, क्योंकि वे भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं। अतः उनकी तुलना विष्ठाभोजी शुक्रों से की गई है। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर भौतिकतावादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यकलाप को सुनने का इच्छुक रहता है, चाहे वह राजनीतिज्ञ हो, धनवान हो या उपन्यासों में वर्णित काल्पनिक पात्र हो। ऐसा समय तमाम व्यर्थ साहित्य, कहानियां तथा दर्शन की पुस्तकें हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसा साहित्य पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं, किन्तु जब उनके सामने भगवद गीता, श्रीमद भागवत, विष्णु पुराण जैसे ज्ञान ग्रंथ तथा विश्व के अन्य शास्त्र तथा बाइबल या कुरान आते हैं तो वे उनमें रुचि नहीं दिखाते। ऐसे व्यक्ति भगवान के आदेशों शास्त्रों द्वारा उसी प्रकार से निंदित होते हैं जिस तरह शुक्र होता है। शुक्र मल खाने में रुचि दिखाता है। यदि उसे घी अथवा दूध का बना कोई उत्तम पकवान दिया जाए तो वह उसे पसंद नहीं करता। वह दुर्गंधमय विष्ठा मल को ही सबसे स्वादिष्ट समझता है। भौतिकतावादी मनुष्य इसलिए निंद्य माने जाते हैं, क्योंकि वे दिव्य कार्यकलापों में रुचि न रखकर नारकीय कार्यों में रुचि प्रदर्शन करते हैं। भगवान के कार्यकलाप का संदेश अमृत है, इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी वास्तव में नारकीय है। नूनम दैवेन विहता ये च अच्युत कथा सुधाम हित्वा शृण्वन्ति असद्गाथा पुरिशमिव विद्भुजः। ऐसे व्यक्ति भगवान के परम आदेश अनुसार निंदित होते हैं, क्योंकि वे भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं। अतः उनकी तुलना विष्ठाभोजी शुक्रों से की गई है। वे भगवान के दिव्य कार्यकलाप को न सुनकर भौतिकवादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान के परम आदेश अनुसार निंदित होते। किस प्रकार के व्यक्ति? पिछले श्लोक में कहा गया, त्रिवर्गी कास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधस। धर्म अर्थ काम में केवल इच्छा, मैंने इसी को ही पूर्ति जीवन काल में पूर्ति करने में इसी में प्रसन्न रहने वाले जो व्यक्ति विमुखा, किससे? भगवान हरि की कथा से। उनके बुद्धि माया ने चुरा लिया है। चार प्रकार के व्यक्ति शरण में नहीं आते भगवान के, उनको भगवान की बात अच्छा नहीं लगता है। कौन कौन है? तो उनको भगवान की कथा अच्छा नहीं लगता, कि उनको भगवान की कथा अच्छा नहीं लगता, तो भगवान को शरण में आने वाले चार प्रकार के। नमांग दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यंते नराधमा माया प्रहृत ज्ञान आसुरी भावाशिता। ये भगवान के शरण में नहीं आते हैं, लेकिन यहां पर मूढ़ा कौन है? चार प्रकार के व्यक्ति के लिए मूढ़ा। मूढ़ कौन होता है? किसी व्यक्ति को मूर्ख न कहने के बदले में यदि गधा कहोगे तो समझा जाता है कि कई किसी को कहते कि तुम गधा है तो समझ जाता कि मूर्ख है, इसके पास गधे के समान। कोई इंटेलिजेंस नहीं, बुद्धि नहीं है, दिन रात बोझा उठाते रहेंगे, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए बैठो, बोलाओ बोलाओ तो क्या कहेगा, समय कहाँ है, मेरे पास समय कहाँ है, बहुत बिजी हूं। गधा भी बिजी रहता है धोबी का बोझा उठाने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं कि घास तो कहीं मिलेगा, यह हरी कथा बैठता तो आप लोग को प्रसाद भी मिल जाता है ना। लेकिन उन वो सो गधे के समय परिश्रम करते रहेंगे और फिर गधी की लात खाते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो भगवान की भजन नहीं करेंगे, शरण में नहीं आएंगे, गधे के समान बुद्धि वाले। और मूढ़ा नराधम, नरमे अधम, रूपा जी कहे कि ये कैटेगरी 99 तात्पर्य जो देखोगे भगवदगीता का, तो रूपा जी लगते कि इस कैटेगरी जो है ये 99.9% है संसार के, कौन नराधम, सबसे माने मनुष्य शरीर मिला है लेकिन कार्यकलाप सब इनके कैसे हैं, पशु की तरफ, जिनके बारे में श्लोक कह रहा है। ये राक्षसों से भी भिन्न की दृष्टि से, जैसे और दो प्रकार की कहा गया, जो भगवान की शरण में नहीं आते, माया अपहृत ज्ञान आसुरी भाव से, तो माया अपहृत ज्ञान तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग प्रोफेसर लोग, इनका संख्या लिमिटेड होता है संसार में, ये भी भगवान की शरण में नहीं आते क्योंकि वो सोचते कि हम सब जानते हैं, हमको कुछ जानने का नहीं, ये क्या सब भंगी करते हैं लोग, कुछ काम धाम नहीं करते हैं, हरे कृष्ण लेके घूमते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, कहां से क्या सेविंग पे मैंने ये टकलू चाणक्य बन के बस घूमते रहते हैं, तो लोग वो सोचते कि न्यूज पेपर से और जो कुछ डार्विन का थ्योरी पढ़ लिया तो हम सब कुछ जान लिए, इनको पता ही नहीं भागवत में क्या है, तो ऐसे मूर्ख जो होते हैं, इसको प्रभुपाद ने कहा मिस्टर फ्रॉग, कुआं के अंदर रहने वाले क्या मेढक, वो कुआं का अंदर बस वाले बारे में जानता है, भागवत में जो तो अशेष कोटि ब्रह्मांड की चीज मैंने वर्णन की जा रही है, भौतिक ब्रह्मांड तो सिर्फ संपूर्ण भगवान की सृष्टि का 1/4 है, और उसमें से एक प्लैनेट केवल छोटा सा प्लैनेट है क्या है पृथ्वी, तो उसको और पृथ्वी वो सब कुछ जानने वाले जैसे सोचते अपने को, झूठा अभिमान अहंकार करते हैं, तो ये माया तो ज्ञान जो विशेष करके इंटेलेक्चुअल क्लास संसार तथा कथित आज के ये संसार में जो माने जाते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर विद्वान वैज्ञानिक ऐसे कहा जाते हैं, और आसुरी भाव आशी तक कुछ व्यक्ति होते हैं डायरेक्ट कहते कि हम भगवान हैं, हिरण्यकश्यप की तरफ या रावण की तरफ डायरेक्ट कहते कि हम कल्कि अवतार हैं, अभी कुंभमेला में जाओगे तो कई कल्कि अवतार मिलेंगे उधर है, पिछले कुंभ में तो 6 कल्कि अवतार पकड़ मैंने रिसर्च कर देखे थे कि इंडिया में पूरे 6 आदमी है जो अपने को क्या कहते हैं कल्कि भगवान, क्योंकि पता लगा कि कल्कि इस युग में भगवान कल्कि के रूप में आएंगे, कल्कि अवतार लेंगे, तो इसलिए पहले से अब इसे डायरेक्ट कहते कि हम भगवान है, राक्षस मने राक्षस डायरेक्ट कहते कि हम भगवान है, हम ही भगवान है बस। लेकिन ये जो नराधम वाले होते ये कैसे नराधम क्यों कहते हैं, जिसके कार्य पशु की तरफ, नराधम जो है जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन एक इनोसेंट है, इनको प्रचार किया जा सकता है, किनको नराधम को, ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनको कुछ पता ही नहीं है, ये कैटेगरी संसार में सब जगह सब सर्वत्र व्याप्त है नराधम, ये मांसाहार करेंगे, नशा जुआ सटा खेलना मांसाहार करना अवैध संग ये सब में लगे हुए हैं, तो इनको भी अच्छा नहीं लगता, भगवान की शरण में नहीं आते हैं, ये भी शरण, इसलिए 4 प्रकार के लोग व्यक्ति गीता में कहे कि भगवान ये कभी भगवान की शरण में नहीं आते, लेकिन चारों कैटेगरी से प्रचार किया जा सकता है इनको, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन नराधम का संख्या सबसे ज्यादा संसार में है, भागवत की 10वें स्कंद की पहला अध्याय की 4 श्लोक में कहा जाता है कि निवृत तर शरीर उपगीयमानात भवौषधि स्वत्र मनोभिरामात, उत्तम श्लोक गुणानुवादत पुमान विरज्यते बिना पशुघ्नात, इस श्लोक को कौन कह रहा है, कौन कह रहे हैं, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, तो निवृत्त तरसर प्रकृति में भगवान के गुणगान कौन कर सकता है जिनका इंद्रिय तृप्ति से मन, इंद्रिय तृप्ति में मन नहीं लगा हुआ, उनकी जिसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा समाप्त हो चुकी, जिनकी इच्छा भगवान के इंद्रिय को तृप्त करने के लिए है, निवृत्त जिनकी जो गोस्वामी है उपयोगी मान आते वो हमेशा गायन करते हैं, किसके बारे में, भगवान के बारे में, उत्तम श्लोक चरित्र को गान करते हैं और ये जानते कि यही भव औषधि है, कौन सा भगवान की कथा, यही भव औषधि है, जैसे यह कथा में कहा कि कथा सुधाम, भगवान की कथा ही अमृत है, गोपियां लोग ने भी कहा, क्या कहा, तब कथा मृतम, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी भी रिड़ितम कर्म सापहम श्रवण मंगलं श्रीमदाततम भूवि गृहंती जय भुरीदा जना। उन्हें भी कहे भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त वो जानते हैं कि भगवान की कथा का कथा जो वही अमृत है वही सुधा है, है? और जो जिनकी इंद्रिय संपूर्ण रूप में संयमित है तो ऐसे महान भक्तों की मार्ग अनुसरण करते वो भी जानते हैं कि इनको गायन करते भगवान की कथा को ही चरित्र को ही गायन करते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति विशेष रूप में पशुघाती क्या बोलते हैं कसाई पशुओं को काटने वाले हैं और जो आत्मघाती है जो स्वयं को आत्मघाती, कौन आत्मघाती किसको कहते हैं, जो भगवान की भजन नहीं करता है, अंधंग तमंग प्रविशंती, ये कहां जाते हैं, ये शरीर त्यागने त्यागने के बाद स्वप्न से कहते कि घोर अंधकार में उस लोग वो नर्क में प्रवेश करते हैं। तो ये भगवान की कथा की में रुचि नहीं दिखाते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है, परीक्षित महाराज कहते कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि भगवान की कथा को गायन करने में श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं दिखाएगा, जो जिनकी इंद्रिय संपूर्ण जो इंद्रिय को संयमित करके रखे हैं तो वो तो कथा असुधा को पान करते हैं, उसके सब समय श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, लेकिन विशेष रूप में जो लोग पशुघाती है जो पशुओं को काटकर मांसाहारी है और जो आत्मघाती है प्रकृति में जीवन का लक्ष्य को जानते नहीं है, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी राधा कृष्ण की भजन न करके क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, चाहे कुछ लोग इसमें से पूरे नास्तिक होते हैं और कुछ लोग थोड़ा बहुत आस्तिक दिखाई पड़ते हैं, वो कर्मकांड आदि करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे व्यक्ति जो ये बुद्धिमान माने नहीं जाते, क्योंकि इंद्रिय को संयमित नहीं किए हैं, इनके लक्ष्य ही इंद्रिय तृप्ति करना है, जो जैसे त्रिवर्ग भाई धर्म अर्थ काम को स्वीकार करके जो देवी देवताओं को भी पूजन करते हैं, ये भी मूर्ख है, ये भी भगवान की कथा श्रवण में रुचि नहीं दिखाते हैं, ये भी वही देव देवताओं के बारे में सुनते हैं और कुछ तो निपट मूर्ख हो कुछ भी मैंने इसके नीचे भी होते हैं, लेकिन ये सभी कई भगवान की कथा को जो अमृत के समान जो कथा है अच्युत कथा सुधाम, जो भगवान के अच्युत भगवान अमोघ भगवान की जो कथा को श्रवण करने में ये रुचि नहीं दिखाते हैं, और इनको तुलना जो भगवान की कथा को श्रवण में रुचि नहीं दिखाते उनको इस श्लोक में क्या कहा गया, बीड़ भुजा अर्थात सुअर के समान है, सुअर क्या खाता है, विष्ठा भोजन करता है, अपरूपा तात्पर्य लगता है कि सुअर के पास में यदि आप अच्छे दूध और घी में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर मिष्ठान बनाकर उनको खिलाओगे तो प्लेट में देगो या उसको खाने के लिए वो खाएगा नहीं, वो ढूंढेगा कहां है, क्या क्या ढूंढेगा, विष्ठा कहां है, वो उसको नहीं खाने वाला है, तो इसलिए प्रभुपद ने इस श्लोक में प्रभुपद तात्पर्य में कंपेयर करते कि जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो विशेष रूप में इनको ये सब अच्छा लगता, क्या कौन सा कथा अच्छा लगता है, आजकल बड़ा क्रिकेट बोला क्रिकेट न्यूज है, क्रिकेट न्यूज और क्रिकेट स्टार के चरित्र जीवन के फिल्म स्टार क्रिकेट स्टार इनकी चरित्र सुनने अच्छा लगता है, भगवान को देखने ने भी नहीं जाते, यहां तक कि वो लोग बार क्या कहा जाए, हमारा मेरे को याद है कि मथुरा में रथ यात्रा उत्सव था के महावन प्रभु जो प्रेसिडेंट होता था रथ यात्रा उत्सव में वो आई थी कौन उस समय हेमावाली थोड़ा नाम था तो हेमावाली ने आई थी रथ यात्रा में है? और सब पेपर में भी निकल गया था हेमावाली नहीं आ रही मथुरा रथ यात्रा में उद्घाटन करने के लिए रथ के ऊपर और पूरा रथ यात्रा प्रसन्न में सब तो आप जो ब्रजवासी लोग भी सब जो कौन मथुरा के वो जो भी इस्कन भक्त जाता उसको देखते थे क्या बोलते थे, हेमावलिन कहा है, जगन्नाथ को नहीं देखना है, कहा है रथ में भगवान बैठे हैं, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा रथ में बैठे हैं, वो नहीं, ये सब बड़ा छोटे बच्चे तक, और सब पूछे भाई हेमावलिन कहा है, बोले क्या है पागल है तो ब्रजवासी लोग कृष्ण को देखे नहीं, हाँ बोलो हेमा कब आ रहे हैं, हेमावलिन आएगी उद्घाटन करेंगे, और इतना भीड़ हो गया तो फिर उसको बंद कर दी हेमावलिन को, बड़े कार में चुपचाप पीछे पीछे जाओ, इतना भीड़ होगा ऊपर रथ का ऊपर जाने वाली थी बोलने के लिए, बंद कर दिए। तो लोग का आजकल चेतना ऐसे, आप साधारण व्यक्ति क्या कहे, ब्रज में जो रहने वाले उनकी भी चेतना है। उज्जैन का मंदिर का उद्घाटन में हम गए थे तो उधर भी एक फिल्म स्टार आई थी, क्या नाम उसके है, रानी, हाँ रानी मुखर्जी, अरे सारे इतने भीड़ हो गया टिकट, वो पब्लिक सब आके बंद किया, सिक्योरिटी निकली, इतने छोटा बच्चा आ गया मेरे पास, वो 8 साल के 8-9 साल के होगा, 10 साल का होगा ज्यादा ज्यादा, बोलता प्रभु जी एक टोकन दे देना, टिकट दे देना, क्या करोगे, क्या करना है टोकन, न अंदर जाने का टिकट, किसी ले जाओगे, न रानी मुखर्जी को देखना है, भाई तो छोटा बच्चा है 10 साल की उम्र में स्कूल में पढ़ाई करता है, बोला बोलता है बहुत कृपा होगा, रोने लगे बहुत, बोला आपका बहुत मंगल होगा, अब दे टिकट, तो सारा संसार ऐसे ही लगा हुआ, तो फिल्म स्टार को देखने, फिल्म स्टार की कथा सुनना है, कोई क्रिकेट मैच का कोई खिलाड़ी आ जाएगा और उसको देखने के लिए लाखों लोग आ जाएंगे, भाई इधर का उधर भागवत की कक्षा चल रहा, कोई भागवत कथा सुनने में जितने लोग नहीं इकट्ठे नहीं होंगे, यदि कोई विशेष बिजनेस वाला भी, बिजनेस बारे में बताने वाला कोई व्यक्ति आ जाएगा, वो क्या है कि अमेरिका में फेमस, वो क्या नाम उसका, बिल गेट्स, और यदि अनाउंस कर दीजिए बिल गेट्स का लेक्चर चलेगा इधर आएगा, तो कितने देखो कितने बड़ा बड़ा सब जितने बिजनेसमैन बड़े बड़े सब जो फैक्ट्री सब मालिक सब आ जाएंगे लेक्चर सुनने, भागवत कथा नहीं सुनेंगे, भगवत गीता आप क्या बांटोगे, हमको पता है कि हमारा मीरठ में रथ यात्रा होता, वहां भी हेमावली ने आई थी गेस्ट बन के, उसकी ड्रेस था मीरा बुलेट, और खाली अनाउंस कर दिया कि हेमावली ने गीता देगी साइन करके अपने हाथ से, हेमावली के हाथ से गीता लेने के लिए, अरे बाप लाइन लग गया एकदम 10,000, गीता नहीं दे पाई, हमारा जितना था खत्म हो गया, बस साथ हमारे बॉस में था जितने और जितने फिनिश, हेमावली के साथ में जाए सामने जाए कि उसके हाथ से गीता लेना बस, पढ़ेंगे क्या वो पढ़ कभी कभी ये लोग को यूज किया जाता है ऐसा, लेकिन लोगों की चेतना कैसे है, कोई भक्त धरा कोई सन्यासी देगा अभी इतना भीड़ नहीं लगेगा, कुछ लोग उसका सन्यासी से लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते वो लोग लगे, लेकिन वो हेमावान के हाथ से गीता लेने के लिए बस इतना भीड़ लग गया रथ के ऊपर बस है, तो इसलिए, लेकिन ऐसे ही लोग भागवत कहते कि प्रकृति में स्वर के समय, कौन इनको जो रुचि है केवल, प्रभुपाद कहते जो बड़े बड़े आजकल अभिनेताओं के पीछे खिलाड़ी के पीछे में उनकी बात चरित्र को पढ़ने के लिए बड़ा बड़ा सो फिल्म मैगजीन आता है, और मैगजीन सब आता ना कितने प्रकार के खेलने का मैगजीन जो सो खेल का न्यूज रहता है उसको पढ़ते रहेंगे, ये फिल्म स्टार का लाइफ क्या है, वो जन्म कर्म चमे दिव्य भगवान कहे कि मेरा जन्म कर्म को तुम लोग पढ़ोगे सुनोगे तो त्यक्त आदेहम पुनर्जन्म नैति महामेति सो, उसके फिर दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता, जन्म तो संसार से मुक्त हो जाता है, लेकिन ये लोग वो पढ़ेंगे किसका, इस फिल्म स्टार का क्या उसका लाइफ हिस्ट्री, क्रिकेट प्लेयर का लाइफ हिस्ट्री है, ये सब पढ़ने बड़ा आनंद लेंगे, लेकिन उसके पास में जब प्रभुपाद जी कहते हैं यदि गीता भागवत और रामायण रख दोगे कैसे मैंने ये रख दोगे तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट इनका नहीं, बोले चलो यहां से चलते, कोई साधु यदि कुछ भगवत की था कहने के लिए कुछ बहाना देखेगा क्योंकि बोले हरे कृष्ण मंत्र के बारे में इसके बारे में कुछ बोलना चाहेगा, वो स्थान उठकर चले जाएंगे, बोले नहीं और कुछ चर्चा करते, तो लेकिन भक्तों की जो कार्यकलाप है वो सब भगवान के संबंधित होता है, भक्तों की क्या कार्यकलाप है, भगवत गीता में कहे भगवान ने 10वें अध्याय के 9 नंबर श्लोक में कहे भक्त कौन है, भक्तों की क्या कार्यकलाप है, क्या मत्सीत मदगत प्राण बूढ़यंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, भगवान कहते कि मेरे भक्त कौन होते हैं ना, इनकी मति हमेशा चित्त, चित्त चित्त माने चित्त किसको कहते, मन मन तो सेटल है, मन बुद्धि अहंकार सेटल, लेकिन मन का भी जो और भी उसकी उसका भी कुछ सेटल पार्ट होता है, किसका? मन का भी है। चित्त बहुत है जो कि अत्यंत माने गहिर बहुत गहिर से ही रहता है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। भगवान भक्तों के चित्त में कौन बैठा रहता है सब समय? भगवान। किसी भी हालत से भगवान को नहीं भूल सकते हो। प्रभुपाद ने कहा कि मेरा जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं आया जिस समय मैं कृष्ण को याद नहीं रखा हो। ऐसा कोई क्षण माने कोई भक्त का, भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी जीवन का कोई भी क्षण ऐसा नहीं बीतता जिसमें वो भगवान की चिंतन नहीं करते हैं, भगवान के साथ उनकी कोई भी कार्यकला संबंधित नहीं रहता है। शुद्ध भक्तों की हमेशा चित्त में भगवान ही बैठे रहते हैं, उनकी जीवन संपूर्ण रूप में मदगत प्रारंभ, उनकी जीवन संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में समर्पित रहता है। किन क्या? भक्तों के शरीर नहीं, सॉरी भक्तों के जो जीवन काल जो है, मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन का संपूर्ण अवधि को वो किसकी सेवा में लगाते हैं? भगवान की सेवा में संपूर्ण रूप में समर्पित कर देते हैं। ये सेवा ये मानस देह गेह जो कि छुमर अर्पिलु तो आपदे नंद किशोर। जैसे भगवान कहते मत्सीता मदगत प्राण, उनके जीवन काल संपूर्ण रूप में मेरी सेवा में समर्पित रहता है। बोधयंत परस्परम, एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत कुछ करते तो क्या बातचीत करते हैं? केवल भगवान के बारे में चर्चा चलता है। यही भक्त का लक्षण है, तभी पता लगता है कि भक्त है। भक्त जो होते ग्राम्य वार्ता ना कही वे, ग्राम्य वार्ता ना सुनी वे, ये भक्त का लक्षण है। महाप्रभु ने कहे कि इसलिए जो भक्ति करना चाहता है, जो साधक भी है, उसको भी कभी यदि भक्ति में आगे बढ़ना चाहता तो इससे बचना, किससे? ग्राम्य वार्ता। ग्राम्य वार्ता क्या? फिल्म न्यूज, खेल का न्यूज, इधर से उधर जो किससे कुछ बिजनेस न्यूज, कई प्रकार के न्यूज, ये सारे ग्राम्य वार्ता है। ग्राम्य वार्ता ना कही वे, ग्राम्य वार्ता ना सुनी वे। भक्त क्या करते हैं? बोधयंत परस्पर, किसकी बारे में चर्चा करते हैं? भगवान की। कथयंत स्वाम नित्यम, नित्यम हमेशा इसी के बारे में कथा बातचीत चलता उनके। किसके बारे में? भगवान की जन्म कर्म के बारे में है? जानते कि भगवान की जन्म कर्म दिव्य है, उसी की चर्चा में इनको इतनी किस लिए चर्चा करते हैं? इनको इतनी आनंद अनुभव होता है। कथयंत स्वाम नित्यम तुष्यंती रमंती, किस लिए इसमें उनको परम संतुष्टि तुष्टि प्राप्त होता है, संतुष्ट प्राप्त होता है, इतनी आनंदित होते हैं, उसी में रमे रहते हैं, ये संसार को भूल ही जाते हैं, संसार के बाह्य संसार को भूल जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य उदाहरण देते हैं, जैसे भौतिक दृष्टि से सबसे बड़ा भूला अपने भूल जाने का समय कब आता? जो एक नया नया एक युवक युवती परस्पर को लव करते हैं, परस्पर को प्रेम करते हैं, ये उसके पास प्रेम लेटर लिखता है, उसके पास लेटर लिखता, फिर एकांत में कभी मिलने के लिए उनको सुजोग मिल जाता, तो संसार को तो प्राय भूल जाते हैं, है? सब कुछ भूल जाते हैं। वो जो परम के वो जो जैसे आनंद को लूटते हैं, प्रभुपाद ने कहते कि भक्त तो इसी प्रकार हरि कथा को चर्चा करने में, परस्पर में भगवान के बारे में चर्चा करके उससे भी कई लाखों गुणों अधिक आनंद लूटते हैं। कौन? भक्त। भक्तों को जो भक्ति के जो आनंद को अनुभव करेगा तो फिर उसको छोड़ देगा, है? ये जो संसार में जो लोग हैं वो सोचते कि यही सबसे बड़ा आनंद है। कौन सा? मैथुन सुख, पुरुष स्त्री पुरुष मिलना, और वो संभोग सुख ही प्रकृत असली सुख है। लेकिन जो भक्त है वो जानते हैं, जो ऐसे सुख जीवन में सभी प्रकार के सुख को अनुभव किए हैं ऐसे व्यक्ति कौन? महाराज ने सॉरी जमुनाचार्य है, जमुनाचार्य सब प्रकार के अनुभव किए, पहले राजा थे, सौ रानियां थे, रानियों के साथ में संभोग आदि सुख में रहते थे, अब बड़े सुस्त संघ, लेकिन बाद में जब वो भक्त बन गए तभी फिर जो वो दृश्य आता था, पहले का जो पहले जीवन का जो राजा थे और रानियों के साथ में संभोग करते थे, सौ रानियों सुंदरी रानियां उनकी थी, वो दृश्य जब आता था बोलते क्या है भगवती मुख विकार, उनका मुख विकृत हो जाता था, बोलते थूकने थूकने की इच्छा होता था, दृष्टि को पूरा उनके शरीर घृणा में रोमांचित हो जाता था। किनके? रामानुजाचार्य, जमुनाचार्य। तो इसलिए प्रकृत में जो हरि कथा को हरि कथा रूपी अमृत को पान नहीं किया है तो फिर उसको भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति का कथा वही अमृत लगेगा। बंगालोर ओडिशा में कुछ लोग होते हैं जो गरीब लोग होते हैं, तो उनको अपने बच्चों को रसगुल्ला खिलाने का पैसा नहीं होता है। जो धनी लोग होते हैं वो बाजार से क्या करते हैं? रसगुल्ला खरीद लेते हैं छेना में, पियर छेना में जैसा हमारा बनता है, अच्छे रसगुल्ला ओरिजिनल रसगुल्ला खिलाते अपने बच्चों को, लेकिन गरीब लोगों को बोलते कि हमने बच्चा देखता तो वो भी रसगुल्ला खाने रोता तो वो क्या करते, आलू को बॉयल कर देते हैं, आलू को बॉयल करके भरता बनाते हैं, इसको फिर गोला गोला पड़ते हैं, इसके ऊपर खाली छेना के थोड़ा कोट लगा देते हैं, कोट और शक्कर सिरा ऐसा देखिए मीठा ऊपर का मीठा के कोट लगा जाता है, तो उसको कहते हैं गुलगुला। ये रसगुल्ला उसको क्या कहते हैं बाजार में जो गांव में सब मेला होता ना, गांव में मेला होता है उसमें ये भी शॉप ये भी दुकान रहता है वो गुलगुला के, वो गरीब लोग जाते हैं उसमें, बस रसगुल्ला खरीदेंगे तो एक रसगुल्ला 5 रुपया 10 रुपया अभी तो हो गया, और वो गुलगुला खरीदेंगे तो 25 पैसा 50 पैसा में मिल जाएगा गुलगुला के 50 पैसा 1 रुपया, तो वही खाता है बच्चा, सोचता है पिताजी मुझे रसगुल्ला खिलाया बस, और खा के खुश रहता है। लेकिन एक दिन बाई चांस उसके घर का जो मालिक की सेठ जी का घर में कुछ फंक्शन में गया था, वहां इसको ओरिजिनल रसगुल्ला मिला खाने के लिए, तो बोला ये क्या है, ये रसगुल्ला है। बोला अच्छा ये रसगुल्ला है, दूसरा बार पिताजी जब इसको गुलगुला देगा खाने के लिए खाएगा, बोला नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, ओरिजिनल रसगुल्ला चाहिए, ये नहीं चाहिए, फेंक देगा तुरंत, मुख में लगाए फेंक देगा, बताया क्या है इसमें कोई टेस्ट नहीं है। तो इसलिए भगवान की जो भक्ति में जो सुख है वो कैसे है, रसगुल्ला के समान है, और संसार में जो मैथिल सुख है वो कैसे है लेकिन जब तक इसको हरि कथा का हरि भक्ति का सुख नहीं मिला, भगवान के भजन का सुख नहीं मिला है? जे भजन मिले नहीं, जे सुख मिले हरि भजन में, हरि भजन का सुख नहीं मिला वो क्या करेगा, गुलगुला खाते रहेगा, बोला यही सुख यही ठीक है ना, तो सोचते बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो उसको शुद्ध भक्ति का रस मिलेगा फिर ये छोड़ देगा है? लेकिन ये ऐसा ही होने वाला नहीं है, ये हमको जो जिसके पास रसगुल्ला है तो आपको खिलाएगा, पैसा सेठ जी खिलाएगा ना, सब लोग खिलाएगा, आप ऐसे गरीब लोग कहां से खिलाएगा रसगुल्ला, उसके पास पैसा नहीं तो खुद नहीं खाए आपको क्या खिलाएगा है? जिसके पास पैसा धनी है, धनी व्यक्ति आपको रसगुल्ला खिला सकता है, जो जिसके पास है आपको खिलाएगा, तो वो कहां से गरीब लोग कहे, आप तो जितने बौद्ध जीव है सारे गरीब है, बौद्ध जीव के प्रकृति में आध्यात्मिक दिग में ये सब क्या है, गरीब है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं लाखपति के घर में खाता हूं, गरीब लोग के घर में नहीं खाता हूं। लाखपति कौन है, जो डेली 1 लाख नाम जपता है, उसके घर में वो निमंत्रण स्वीकार करता हूं, उसके हाथ में पानी भी पीता हूं, जो कुछ खाना भोजन खाता हूं, और जो हरि भजन नहीं करते वो सब गरीब है, है? चाहे वो भौतिक दृष्टि से बड़ा बड़ा करोड़पति अमीर है, लेकिन प्रकृति में वो क्या है, गरीब है, भगवान उनके घर हाथ में नहीं खाते, उनके घर से नहीं खाते है? तो इसलिए जो भक्त होते हैं चाहे बाह्य दृष्टि देखे पड़ते हैं सही, वो उसको अच्छा लगता था, गुलगुला खाता था। कौन वो था, एक साउथ इंडिया में एक व्यक्ति धनुर्दास है? वो देख रहा था किसको, वो बेस्या को देख रहा था, हेमांबा है, बहुत सुंदर देख रहे हेमांबा, उसके तो उसको देख रहे थे कितना सुंदर है इसकी मुख, देखो सोचता कि यही अमृत है, यही है रसगुल्ला, यही तो सबसे आनंद वाला वस्तु यही है। तो इतनी बड़ा प्रोसेशन में रंगनाथ जी के सामने इतना बड़ा प्रोसेशन जा रहा था, और वो सब उल्टे चल रहा है भगवान को, सब लोग भगवान के सामने के देखकर कीर्तन कर जाते, लेकिन ये पीछे करके और उसका मुख को देख रहा था, किसको, बेस्या भी चल रही, लेकिन उसके बेस्या का मुख को देखकर छतरी दिखा रहे, धूप चल रहा थोड़ा तो था, छतरी दिखा रहे थे किसको, वो बेस्या को छतरी दिखाकर उसके मुख को देखकर पीछे पीछे चल रहा, पीछे कोई ड्रेन आ जाएगा तो गिरेगा, तो उसको ध्यान नहीं, वो सब सीधा जा रहा है। लेकिन रामानुज आचार्य जो बैठे थे प्रोसेशन में, वो देखे कि रथ के ऊपर, बोले क्या रे ये व्यक्ति कैसा है, ऐसे कोई चिंता नहीं, बोले इसको बोला बोलाओ, मेरे पास मूर्ख है तो बोला है, तो बोले क्या कर रहे हैं तुम, सारे लोग नाच रहे गा रहे भगवान की प्रोसेशन जा रहा है रघुनाथ जी की, तुम क्या कर रहे हो, तुम इसे वो औरत का मुख को देखकर चल रहे क्या, बोला बोले देखिए आचार्य जी, मुझे तो इससे बड़ा और सुंदर वस्तु संसार में आए भाई, इससे इसको देखने में मुझे जो आनंद आता है, इससे बड़ा आनंद वो कोई चीज में मुझे नहीं मिलने वाला, न इससे कोई सुंदर वस्तु हो सकता है संसार में, कितने सुंदर है उसके मुख है। भक्तों को तो कंदर्प कोटि को मनी विशेष अशोभ, हम किसको लगता है भगवान के मुखड़ा को, और बद्ध जीव को किसका अशुभ मुख अच्छा लगता है, स्त्री को पुरुष का मुख, पुरुष को स्त्री का मुख अच्छा लगता है, क्योंकि काम क्या, इसका रहस्य क्या है, केवल मैथुन इच्छा है, तो ये है, तो इसलिए अच्छा लग रहा, तो कह के अच्छा, यदि वो स्त्री का जो मुख है उससे यदि सुंदर और कुछ वस्तु तुमको दिखाई देगा जिससे तुम ऐसे भी अधिक करोड़ गुण से अधिक आनंद मिलेगा, तुम इसको छोड़ देगा, बस छोड़ दूंगा है। भगवान ने कहा गीता में क्या कहा, रसवर्ज रसपेश्य पुनः परम दुष्टा निवर्तते, बोले ठीक है, रामानुज आचार्य कहे ठीक शाम को आओ तुमको दिखाता हूँ, कहाँ भगवान के थोड़ा दर्शन कराने जा, लेके जाऊंगा वहां दर्शन कराने। बोला रंगनाथ जी को मैं कई बार दर्शन किया हूँ, क्या होने वाला उससे, मैं ऐसे कई बार गया हूँ रंगनाथ जी, क्या होता है उसे रंगनाथ जी को देखा हूं, लेकिन ये बहुत सुंदरी है क्या हेमांबा, इसका मुख कितना सुंदर है। रामानुज आचार्य कहे ठीक है तुम मेरे साथ आओ, लेकिन आज गया रामानुज आचार्य के साथ में गया, और रामानुज आचार्य कहे कि ठीक है तुम खड़े रहो। पहले उन्होंने रंगनाथ जी को दर्शन किए और प्रार्थना की, किसके लिए, रामदास के लिए, प्रभु ये मूर्ख को आपकी कंदर्प कोटि कमनीय रूप छोटा से कभी एक छोटा केवल एक झलक इसको दर्शन करा दीजिए मूर्ख को, क्योंकि रामानुज आचार्य प्रार्थना की है। तो इसलिए ये जब देख रहा था, जो आंख देखा रंगनाथ जी की तरफ और एक शुद्ध भक्त की प्रार्थना किया, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो तुम्हारा सकती आछे आमित कांगा कृष्ण कृष्ण बोली नहीं धाई तप पछे पछे। भगवान के होते भक्त अपने, भगवान किसके होते, भक्त के होते हैं। आज रामानुज आचार्य प्रार्थना करते थे इसलिए है, जब उसके लिए प्रार्थना की, बोले तो ऐसे कितने बार धनुर्दास देखा था भगवान को, कुछ नहीं देखा है, भौतिक आकर्षण नहीं जा रहा था वैश्य के प्रति, लेकिन आज देख रहा था रघुनाथ जी के मुख को देखते ही आंख में आंख मिल गया भगवान की, तो और देख रहा बस कंदर्प कोटि कमनीय रूप देख रहा, तो उसके आंख से ही अश्रुओं की धारा बहने लगा, किसके आंख को हटा नहीं, वहां से हटा नहीं आंख, आंख वहीं देख रहा बस, वो जो वैश्य को देख रहा था मुखड़ा उसके में कोई अश्रु नहीं गिरा था, इतने आनंद हो, तो अभी देख रहा था आंख की अश्रु बहते रहा, नयनाद गलद अश्रु धाराया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितंग वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ये कैसे होगा ना भक्त की कृपा से, ये जो इसलिए जब देखा उसी दिन रंगनाथ जी को बस देखते देखते वही देख रहा था आंख से अश्रु और आंख और कहीं नहीं जा रहा, और उससे जो उसको अनुभव सुख अनुभव हो रहा और वो छोड़ भी नहीं, वो लोभ को छोड़ नहीं पा रहा, इसलिए भगवान के मुख से दृष्टि को अलग करने के लिए वो इच्छा प्रकट नहीं हो रहा, वो एक ध्यान से देख रहा देख रहा देख रहा बस, जब तक मूर्छित होकर नहीं गिर पड़ा तब तक खड़े रहा है। तो इसलिए ये तो गुलगुला को रस नहीं, जो भौतिक सुख है, जो जो कुछ भौतिक कथा श्रवण में भौतिक इंद्रिय तृप्ति में जो सुख मिलता है, जब तक हम साधु संग नहीं किए, किसी महान भक्त के संग में नहीं आए, तब तक अच्छा लगता है हमको, लेकिन प्रकृति में यदि हम शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त करेंगे, उनकी हरि कथा को उनके मुख से श्रवण करेंगे, तो फिर भौतिक भौतिक आसक्ति इससे नष्ट होगा, भौतिक कथा श्रवण की जो इच्छा व भौतिक इंद्रिय तृप्ति के साधन को छोड़कर फिर हम हरि भक्ति में लग सकेंगे। लेकिन इसके लिए धनी व्यक्ति चाहिए, जैसे रामानुज आचार्य जी, महान प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान भक्तों की कृपा जब तक नहीं होगा, ये छोड़ेगा ना, छूटने वाला नहीं है, कौन सा विषय आसक्ति, ये हमारा प्रचेष्टा से नहीं छोड़ने वाला, हमारा बात को भगवान नहीं सुनने वाले, भगवान किसको सुनते हैं, उनकी शुद्ध भक्तों को सुनते हैं, हमारा बात को जानते कि ये कितने बार बोलेगा और कितने बार टाल देगा, ये इसको विश्वास नहीं, बद्धजीव को विश्वास नहीं कर सकते भगवान, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों को विश्वास करते हैं। इसलिए जब हम इसी प्रकार महान शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे और उनकी मुख से कथा को श्रवण करेंगे, तभी भौतिक आसक्ति छूटेगा। कथा अमृतम तदा तब कथा अमृतम, तभी जब भगवान की कथा जो अमृत है, लेकिन कथा सुनने भी सोचते कथा यदि अभक्तों से सुनोगे तब से कोई प्रभाव नहीं आने वाला है, इसलिए ये सतर्क किया गया, यदि कथा अमृत है, भगवान की कथा अमृत है, लेकिन फिर भी किससे सुनने से, अभक्तों से यदि सुनोगे, सर्पोचिष्टा यथा अपयम, यदि हरि कथा भी अमृत है, बाहरी के विषय में कुछ भी संबंध है, तो ये हरि ये अमृत की तरफ होने पर होने भी ही, फिर भी जैसे दूध अमृत के साथ तुलना कीजिए, दूध भी अमृत के समान स्वादिष्ट वस्तु है, लेकिन यदि सांप इसमें मुख टच कर मैंने मुख लगाकर खाया, कुछ खाने के बाद चला गई बस, उसका पेट भर गया चला गया, लेकिन वो जो दूध रह गया उसको आप पी सकोगे, नहीं पी पाओगे, उस दूध सांप जैसे दूध को स्पर्श करते ही विष बन जाता है, ऐसा ही जो अभक्त है, जो केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए घर वाल चलाने के लिए कुछ संस्कृत पढ़ के पंडित बन जाते हैं और कुछ व्याख्या बस अच्छे गान बजान संगीतमयी कथा मनोरंजन बहुत अच्छा होता है, और ऐसे सुनने से कोई भी भक्त नहीं बनता है, ऐसे कथा सुनने से कुछ लाभ नहीं होगा। सनातन गोस्वामी इसलिए सत्र कराते हैं, सर्पोचिष्ट जथापयम अवैष्णम मुखदगिर्न पुत हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यं सर्पोचिष्ट जथापय। हरि कथा अमृत होने पर भी जो अवैष्णव है, जो भक्त नहीं है, उनकी मुखारविंद तो उनकी मुख से वो कथा बहुत सुंदर, चाहे बहुत अच्छे म्यूजिक बला बहुत कुछ अच्छे करता है, लेकिन ऐसे कथा सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि शुद्ध भक्त की मुख से कथा को श्रवण करोगे तभी वो काम में लगेगा। शुद्ध भक्तों के द्वारा वर्णित बा जो तात्पर्य भी पढ़ोगे, किताब भी पढ़ोगे, शुद्ध भक्तों के द्वारा जो व्याख्या की गई है पुस्तक का, उसको पढ़ोगे तो आपकी भक्ति मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि कृष्णर चरित्र आ रहा भक्तेर वर्णन यहा जो ही दोष देखे से ही पापी जाना, ये पापी है। कौन? यदि किसी शुद्ध भक्त ने भगवान के चरित्र को वर्णन किया है, भक्ति वेदांत तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, जो प्रभुपाद जी से शुद्ध भक्त कोई तात्पर्य लिखा है, प्रभुपाद जी की वर्णन किया है, और उसमें यदि दोष देखता है वो कौन है? सही पापी जाना है, ये पापी है। यदि कोई शुद्ध भक्त की रचना से त्रुटि देखता है, तो इसलिए शुद्ध भक्तों की मुखारविंद से कथा को सुनने से वो काम करता है अमृत। लेकिन वही हरि कथा को यदि पेशवार कथा का जो परिवार चलाने के लिए कथा करता है उससे सुनने से क्या होगा? उसे हरिभक्त नहीं मिलने वाला है, है? वो बोलेगा भागवत सुनना ठीक है, क्या चाहिए तुमको? पहले पेशवार कथाकार होता ना, अब तो कथा कराते हैं, सेठ लोग भी होते कथा कराते हैं, क्योंकि मेरे को पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। अच्छा ठीक है, वही प्रसंग सुनाते आपको, जैसे तुमको पुत्र मिलेगा, धन मिलेगा, उसी प्रसंग सुनाएंगे। भागवत को यूज करते, लेकिन किसमें? इंद्रिय तृप्ति में। भागवत प्रारंभ से ही कहता कि धर्म प्रयोजित प्रजोहित कैटभत्र परम निर्वत्सरणाम सताम, है? ये सारे चीटिंग रिलीजन को रिजेक्ट करता, प्रारंभ से कहा गया। लेकिन ये मूर्ख कहते कि नहीं, इंद्रिय तृप्ति भी भागवत के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति करेंगे, उसे प्रसंग सुनाएंगे। बोले लड़का चाहिए ठीक है, हम बताते हैं कौन सा पढ़ने का, धन चाहिए कौन सा प्रसंग पढ़ने से धन मिलेगा, वो सब ऐसे कथा करने वाले होते हैं, भागवत को भी यूज करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका आचरण शुद्ध नहीं है, जो आचरण नहीं करते लेकिन बोलते, वो शास्त्र बोलते लेकिन खुद जीवन में आचरण नहीं करते हैं, तो उनकी बात को सुनने से कोई प्रभाव नहीं डालने वाला। बात उसी कथा को सुनने वो अमृत नहीं हो, यदि भगवान भागवत कथा अमृत है, लेकिन इसको भक्तों की मुख से सुनना चाहिए, तब कथा अमृतम तब तीवन। तीनों त्रिताप को नष्ट करने के लिए, त्रिताप क्लेश को, ये कथामृत ही है, लेकिन फिर भी इसको किससे सुनना चाहिए? भक्तों से। प्रभुपाद ने लंदन में लेक्चर दे रहे थे, तो उनके शिष्य लोग ने प्रभुपाद जी के लिए बहुत सुंदर हॉल बुकिंग करके रखा था, एसी हॉल, उसमें 2-3 हजार लोग बैठ सकते हैं, नहीं सर कम से कम 1000 सीट था, लेकिन कथा सुनने के लिए आते थे सिर्फ 250 लोग, 250-300 लोग आते थे। और वहां पर एक मायावादी लोग कथा करता, माया बने फ्री में कथा करता था, सुख संपत्ति घरे आवे दुख मिटे तनका जय जगदीश हरे, आरती सिखाता था और डेली कथा होता था। वहां खूब मैदान बहुत उसका लगा हुआ था, वहां बहुत लोग आते थे, वहां 60-70 1-1.5 लाख लोग कभी कभी हो जाते थे। तो एक सज्जन ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप इतने बड़े संस्था का संस्थापक आचार्य हो और आपके लिए शिष्य लोग ने इतना बड़ा एसी हॉल, पूरा एसी बुकिंग हॉल, एसी हॉल बुकिंग करके रखा है, तो इसमें 250-300 लोग आते हैं और फ्री में उसमें इतने ठंडी में लोग बैठते हैं, और वहां पर देखिए वहां तो हजारों संख्या में लोग जाते हैं, इसका क्या रहस्य है? तो प्रभुपाद ने कहे कि आपको क्या दिखता है, लोग कहां ज्यादा जाते हैं, हीरा मार्केट में या सब्जी मार्केट में, कहां भीड़ ज्यादा लगता है? तो बोले सब्जी बेच रहा है, अब मैं इधर हीरा बेच रहा हूं। देखो ये स्वाभाविक है कि हीरा मार्केट में कम लोग होंगे, जो हरि भक्ति है हीरा मोती के समान है, ये आसान से निष्किंचन भक्ति सभी लोग करना आसान नहीं है, चाहे भक्तों की भैंस में भी है, फिर भी क्या इंद्रिय तृप्ति की वासना नहीं गया है अंदर में, अंदर फिर भी रहता है, सूक्ष्म रूप में रहता है, लेकिन इस जाएंगे कैसे ना, यदि हम प्रकृति में कथाओं को श्रवण करेंगे, इसके कोई दूसरे उपाय नहीं है। हमें वो सूअर की तरफ नहीं बढ़ना, जैसे कहते कि सूअर के समान, सूअर जैसे बिष्ठा खाता है, हम भक्ति करेंगे और थोड़ा थोड़ा टीवी भी देखेंगे, तो कैसे चलेगा? थोड़ा सा क्रिकेट न्यूज भी थोड़ा रखना चाहिए ना, कुछ कौन है, साधारण जनरल नॉलेज रहना चाहिए सुबह, तो ऐसा जब लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं आगे बढ़ के फिर वो इससे संपूर्ण मुक्त रहते, वो केवल हरि कथा को ही चर्चा करते हैं। वो जानते हैं कि भगवान के संबंधित कोई भी वस्तु क्या वही ही प्रकृति में अमृत के समान स्वादिष्ट है। लेकिन क्या करेंगे हमको क्या, बोले ये लोग ऐसा ही रहेंगे जो गधे के समान ने जो सुअर के समान जो हमेशा विष्ठाखार है ऐसे ही खाने, इनको छोड़ देना, इनको कुछ फिर हलवा खाना सिखाना है, हैं? कैसे सिखाओगे? जब तक सुअर का शरीर में रहेगा वो कैसे सीखेगा? ना सुअर भी चेष्टा करने से भी गाय नहीं बन सकता इतने आसान से। ये कभी कहते कि एक सुअर था, सोचा कि मैं गाय बनूं। देखिए गाय को सब लोग आदर करते हैं और मुझे कहीं भी देखता तो लाठी दिखाकर भगाता है। तो बोला गाय को तो बड़ा, तो गाय बन जाऊं कैसे बनूं? बोला कि बस डेली गंगा का, गंगा में स्नान करूंगा, गंगा के किनारे किनारे घास उसकी खाऊंगा, मिट्टी खाऊंगा, ऐसा सिर लगा दूंगा तिलक जैसे लग जाएगा, हैं? तो अच्छा होगा। लेकिन ऐसे कहते कि ऐसे सुअर यदि प्रचेष्टा करेगा भी क्या गाय नहीं बन सकता है? सुअर गाय बन सकता है चेष्टा करने पर भी, हैं? लेकिन आप चेष्टा करोगे तो बना सकते हैं। सुअर गाय नहीं बन सकता, लेकिन जो जो भौतिकवादी व्यक्ति है उनको भक्ति में लाना संभव है यदि कोई महान, नारद जी बना सकते हैं। नारद जी जैसे महान भक्त है, उनके साफ भी डिसाइपल है। किनके? नारद मुनि सबको डिसाइपल बनाते हैं। किसको? सांप को भी, एक सांप को भी शिष्य बनाए। पुराण में वर्णन है एक सांप शिष्य था उनके, और सांप को शिष्य बनाया हुआ तो हरिनाम सिखा दिया इसको, बोले कि हिंसा नहीं करना, किसको चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना सिखा दिया बस। सांप फिर अपना फोंक करना छोड़ दिया, बोला और किसको माने, मतलब हरिनाम दिखा ले लिया और क्या करो, तब सब पिटाई करने लगे इसको, तो बच्चे लोग सब ढला मारने लगे, तो सांप को देखो तो आधा मारा हाई पड़ा। तो नारद जी बोले क्या हुआ तुम्हारे ऐसे? हाँ गुरुदेव आप तो बोला ऐसे ही, मैं छोड़ दिया सब हिंसा करना छोड़ दे। हाँ भी बोले तुमको भी बोला था कि काटना नहीं किसको, लेकिन फोंक करना थोड़ी बोला था, मना कर दिया काटना है तो फोंक कैसे करना, नहीं काटना नहीं किसको, लेकिन फोंक करना बस भाग जाएंगे सब। तो इसलिए कभी कभी ऐसा ही महान व्यक्ति से नारद जी जैसे होते तो वो किसी को परिवर्तन कर सकते, सुअर को भी गाय बना सकते हैं, लेकिन हम जैसे बौद्ध जीवन के प्रति संभव नहीं है। लेकिन हम उसको कर सकते हैं जब हम उनके निर्देशन के आधार पर कार्य करेंगे, हैं? प्रभुपाद जी ने जैसे किए हैं पाश्चात्य जगत में जाकर, और सर आपने चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल तोड़ने वाला व्यक्ति को भी भक्त बनाए, इनको भी महान भक्त बना सके। लेकिन हम यदि प्रभुपाद जी के निर्देशन की वजह से बोले हैं, बनाने का प्रोसेस हमको पता नहीं है, लेकिन हम यदि उसी प्रोसेस को ठीक ठीक से फॉलो करेंगे और उसी को पालन करेंगे स्ट्रिक्टली, पर क्रेडिट हमारा नहीं, क्रेडिट किसको किसका रहेगा? प्रभुपाद जी का। तो फिर थोड़ा हम उसी मार्ग में जाने से कुछ सफलता को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सारा प्रभुपाद जी का जो ये स्वर के समान है, जो ग्राम्य कथा कहते हैं, ग्राम्य वार्ता सुनते हैं, फिल्म स्टार के चरित्र पढ़ते हैं, क्रिकेट स्टार के चरित्र पढ़ते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं, ग्राम्य वार्ता माने फालतू बातें की चर्चा करते हैं, ये हरि कथा प्रकृति में अमृत है। दूध के दूध और में बना हुआ कुछ मिष्टान्न है, लेकिन वो उनको वो तभी अच्छे लगेगा जब भी उनको प्रकृति में इसमें रुचि जाएगा भौतिक चीजों की दृष्टि से इसको खाने में जरूर। लेकिन इस प्रकार व्यक्तियों को हम यदि हरि कथा आस्ते 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 शुद्ध भक्तों की संगति में आएंगे तो इनकी मति बदल सकता है। इनको बदलना ही हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। हम पाप को घृणा करें लेकिन किसको घृणा न करें? पापी को नहीं। किसको घृणा करें किया जाता है? पाप को घृणा करते हैं जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल तोड़ते हैं, नराधम है इनको, लेकिन इनको प्रचार करना चाहिए। जो नराधम होते हुए भी उनके प्रति करुणा की भावना रखना चाहिए, उनको प्रचार करना चाहिए। उनको प्रचार करते करते जब ये स्वीकार करेंगे प्रचार को, फिर वो भी एक दिन आएगा भी हरिकथा सुनने में आनंद लेंगे। आप देखें प्रभुपाद ने पाश्चात्य जगत में लाए, वो हरिकथा सुन प्रारंभ से कोई नहीं सुनता था, लेकिन प्रभुपाद ने इनको भी सुनाया लगा दिया भागवत की कथा, भागवत को पढ़ने में सुनने में है? तो इसी प्रकार मनुष्य जीवन की सफलता तभी होता है जब भी भगवत कथा में हमें रुचि उत्पन्न करते हैं, नहीं तो ये मनुष्य जीवन बेकार जाता है। धर्म सुनिष्ठितात्पुंसा विश्वक्सेन कथा सुज न उत्पादयत यदि रतिम समय वही केवलम बुथा परिश्रम। श्री हरि कथा सुने और इसको जीवन में उतार, कुछ लोग सुनते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते हैं। सुनना ठीक अच्छा है, सुनने बैठते क्लास में है, सुनने बस सुनना है, क्लास में बैठना है, लेकिन क्लास में बैठना और उसको जीवन में उतारना में फर्क आता ना है। सुनना और फर्क ठीक है, रूटीन है, कुछ लोग है ना नियमाग्रह सुनते रहे, आए बैठ गए, आए बढ़ते सुने। यदि ऐसा सुनने भी सुनते रहेगा तब भी रूप गोस्वामी कहते कि और जंडिस बीमारी हो तो गना चुबाते खाते 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 कभी क्या होगा, बीमारी छूट जाएगा है ना। हरी कथा तो मिष्ट मधुर है मिश्री के समान, लेकिन हमको बीमारी है, कौन सा बीमारी, जंडिस बीमारी है तो उसको ठीक नहीं लग रहा, लेकिन जो नियमित रूप में आके बैठेगा सुनते रहेगा ठीक से होगा, एक दिन आस्ते आस्ते बीमारी जा सकता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करना चाहिए बड़े अधिक से, खाए ठीक से गणा को चूसना चाहिए, सुने कम से कम बैठ के, और आस्ते आस्ते से साधु संघ में यदि कथा सुनेंगे और प्रयास करेंगे तभी हम सुधार सकते हैं। प्रकृति में आध्यात्मिक उन्नति किसमें होता है, प्रभुपाद जी ने कहा कि बाप आचार्य लोगों ने कहे कि प्रकृति में आध्यात्मिक उन्नति कैसे होता है भक्तों की, भक्ति का पहला अंग श्रवण, चाहे भागवत के श्रवण करें या क्या करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सारे भागवत इसी के लिए कहा गया। भागवत सारा कहता कि क्या करना है, करो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणान कीर्तनात एव कृष्णस्य। इसलिए आचार्य लोग कहे कि 99% एक व्यक्ति का आध्यात्मिक उन्नति निर्भर करता है श्रवण कीर्तन के ऊपर, चैंटिंग के ऊपर, चाहे भागवत की चैंटिंग करे या श्रवण कीर्तन का आचार्य स्वयं परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी या हरे कृष्ण जुगधर्म, हरे कृष्ण मंत्र को सुबह जो जप कर रहे हो, जप कितने सावधानी से कर रहे हो उसके ऊपर पूरा आपके आध्यात्मिक उन्नति निर्भर करता है। 99% आपका कोई आपका जो प्रोग्रेस आध्यात्मिक मार्ग पर ये इसके ऊपर निर्भर करता है, किसका ऊपर, चैंटिंग है, कितने सावधान से जप कर रहे हो, श्रवण कर रहे हैं, कितने अच्छा से इसको जप रहे हैं और सुन रहे हैं, बाहरी कथा श्रवण भी, ये भागवत श्रवण भी उससे मैंने भिन्न नहीं है, भागवत कथा भी ये भी जब ये भी श्रवण है, सुन रहे भागवत कथा, लेकिन यदि हरि कथा को भक्त के मुख से सुने हैं, ठीक ना। तो इसी प्रकार भगवान की कोई भी वस्तु प्रकृति में मधुर है, लेकिन जो बद्ध जीव उसके लिए वो कैसे लगता है, कड़वा लगता है, वो बीमारी आदमी है तो उसको कड़वा लगता है, बा जो बद्ध जीव है वो सोचता कि ये तो जो इंद्रिय तृप्ति के साधन है यही प्रकृति में बहुत अच्छा है, वो गुलगुला खा के बड़ा खुश रहता है, लेकिन भक्त तो रसगुल्ला खाते हैं, कभी भक्तों के साथ संग में आके मिल जाएगा तो बाई चांस उसके भाग्य है, आज के नाचेगा गाएगा संडे फिस्ट खाएगा दो चार बार, फिर कि हाँ बोलेगा बहुत अच्छा है, वहां से धक्का खाएगा दो चार बार, माया से लात खाएगा तो फिर आ सकता है, भगवान चाहेंगे भक्त कभी बन सकता है कभी, यदि भगवान चाहते हैं, नहीं तो और कौन, भगवान चाह नहीं, भगवान के भक्त चाहता है, किसी शुद्ध भक्त चाहता है कि ये भक्त बने तभी वो भक्त बन जाएगा है, भक्त की इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं, प्रभुपाद जी ने चाहा कि ये सब भक्त बने, पाश्चात्य जगत में प्रचार किया अपने गुरु महाराज की दास का आदेश को लेकर तभी बन रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे कि वो वासुदेव दत्त, उन्होंने कहा कि महाप्रभु मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं सारे जीवों के पाप को लेना चाहता हूं, 84 लाख जोनी में जितने भी जीव है वो सभी के पाप मुझे दे दीजिए और ये सभी को आप जन्म मुक्त संसार से मुक्त कर दीजिए। ऐसा ही इच्छा जब किसी शुद्ध भक्त के मन में होता है तो भगवान फिर उनकी प्रार्थना को सुनते, किनकी प्रार्थना को, शुद्ध भक्त की प्रार्थना को, हमारा बात नहीं सुनते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त प्रार्थना करेगा उसको सुनते हैं, भगवान को भी टालते नहीं अपने शुद्ध भक्तों के वचन को, कौनते ये प्रति जाना ही नमे भक्तिया कुंती पत्र, तुम बोल दो इस बात को फिर मैं इसको रक्षा करूंगा, मेरे वचन को तो मैं टाल देता हूं बार बार, भगवान अपने वचन को टाल देते लेकिन भक्तों के वचन को नहीं टालते। भक्त कहा कि इसको उद्धार करने की भावना आ गया, नारद जी के मन में इच्छा हो गया, दशरथ रत्नाकर को उद्धार करने का उद्धार हो गया, नित्यानंद प्रभु की इच्छा हो गया जगाई माधाई को उद्धार करने के लिए, महाप्रभु को यह हो गया, जब आपके मन में इच्छा हो गया ऑलरेडी उद्धार हो चुके हैं शुद्ध भक्ति के मन में इच्छा होने से। तो इसलिए शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्तों के शरण में आना चाहिए डेली नियमित। इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुनना, ऐसे आपको भक्ति मिलेगा। और कोई दूसरे कोई विद्वान व्यक्ति कुछ भी लिखा है उसको पढ़ने से भक्ति नहीं मिलने वाला है, है? उसको पढ़ा थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा इधर तर्क वितर्क करने के लिए, लेकिन भक्ति नहीं मिलने वाला है। भक्ति कुछ अलग चीज है, है? चैतन्य भागवत में और कई चैप्टर के प्रारंभ से बार बार उसको रिपीट करते वृंदावन दास ठाकुर, धन जन धन जन पांडित्य चैतन्य नहीं पाई, केवल से भक्ति वश चैतन्य गोसाई, केवल भक्ति का ही, भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होते। कौन? गौरांग महाप्रभु, वो दूसरे किसी से नहीं। बड़ा धनी व्यक्ति करोड़पति आदमी है, बहुत फॉलोअर्स है, पांडित्य बहुत है, संस्कृत बहुत पढ़ा, बहुत बड़ा स्कॉलर है, इससे नहीं मिलने वाले हैं। दिनेर अधिक कृपा करे भगवान, कुलीन ब्राह्मण पंडितेर बड़ा अभिमान, अभिमानी है। तो इसलिए आप लोग बड़े अच्छे स्थान पर हैं और आज मैंने प्रभुपाद जी के शरण में आए हैं, इसलिए प्रभुपाद जी की किताब को सावधान से पढ़िए और उनकी मार्गानुसरण करिए, आपके कल्याण होगा अवश्य। पाइवे कृष्ण विश्वास पलन, ठीक है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? एक प्रश्न कोई पूछ सकते? कोई प्रश्न है? ना प्रसाद का टाइम हो गया। हाँ, कौन प्रश्न? हाँ, हर इच्छा को हर व्यक्ति का भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं जो जैसे चाहता है, लेकिन इच्छा जो सत इच्छा है कैसे आएगा? सत इच्छा हमारे पास नहीं होता ना, हमारा जो इच्छा, इसलिए हम माया में फंसे हुए हैं। अशुद्ध भक्त होते हैं वो अच्छे इच्छा मैंने जो इच्छा करते हैं तो भगवान को प्राप्ति करने की इच्छा उनके मन में होता है भगवान को प्रसन्नता के लिए, लेकिन बद्ध जीव के मन में कैसा इच्छा रहता है? अपने इंद्र तत्व की इच्छा रहता है, है? तो इसलिए आप यदि इसे आपका इच्छा पूर्ति होते रहे फिर भगवान को ऐसे चाह तो इंद्र तत्व का इच्छा, लेकिन चेतना को बदलने के लिए भक्तों की सहायता चाहिए। आज भक्त जो बद्ध जीव प्रार्थना नहीं करेगा ना, वो करेगा तो थोड़ा सा खेणी कभी विपदा आ गया तो करेगा, फिर संपदा आ गया भूल गया, इसको भगवान जानते हैं, ये भूल जाएगा। स्वतंत्रता है फिर भी बद्ध जीव के पास, तो इसलिए भगवान जानते हैं अभी विपद आ गया तो मुझे पुकार रहा है, अब तो थोड़ा सा संपत्ति मिल गया फिर भूल गया, है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं विपद में क्या संपद में क्या, सभी समय भगवान को स्मरण रखते हैं, है? यही फर्क है बद्ध जीव में, बद्ध जीव पुकारना और एक भक्त पुकारना, है? वो कभी नहीं भूलते हैं भगवान, इसलिए जानते हैं कि ये जो बद्ध जीव भी अभी पुकार रहा है विपद आ गया, लेकिन संपद आएगा तो भूल जाएगा। दुख से सुमरण सभी करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमरण यदि करे दुख काहे के होई, काहे किस लिए दुख आएगा? दुख आता तो भी बद्ध जीव तो प्रार्थना करता कभी कभी, ये साइंटिस्ट लोग भी मानते नहीं, लेकिन जब रॉकेट छोड़ दिया वहां से देख रहे गिरने वाला है तो फिर थोड़ा सा भगवान को याद आ जाता तभी, तो अभी भगवान को गॉड प्लीज सेव बना तब तो भी आ जाता है, तो विपद जो आता है। लेकिन जो भक्तों की शरणागत भक्त है, इसलिए आचार्य लोग कहे कि शरणांग शरणागति हो वे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, श्री नंद कुमार कृष्ण उसकी प्रार्थना सुनते हैं। जो पूर्ण शरणागत भक्त है भगवान तो जानते हैं कोई चीटिंग नहीं करेगा, बद्ध जीव के चार लक्षण से मुक्त है, चीटिंग प्रोपेंसिटी इसके पास में नहीं है, है? तो फिर उसकी बात को सुनते हैं भगवान, विशेष में वो जो प्रार्थना करता सुनते हैं। लेकिन बद्ध जीव क्या करेगा, बद्ध जीव ऐसे प्रार्थना करेगा, विशेष रूप में कृष्ण नहीं सुनते बद्ध जीव के बाद प्रार्थना को, वो अन्य अपने एजेंट के माध्यम से देवी देवताओं को, जो वो तो डायरेक्ट भगवान के पास जाता नहीं, त्रिवर्ग माने धर्म अर्थ काम को प्राप्त करने के लिए अन्य अन्य देवताओं के पास जाता, उसको पता भी है कृष्ण के पास जाने से नहीं देगा, तो इसलिए जाते नहीं है। वो जानते हैं कि इसको देने से वो नहीं देगा, हमको वो भी मुख्य नहीं चाहिए, मुख्य देने वाला केवल है, मुक्ति देता है हमको, मुक्ति अभी जरूरत नहीं, मुकुंद उसके नाम, हम ही दूसरे से काम हासिल करते, ये देगा नहीं हमको मांगने से, है? जानते हैं, उनको पता भी है, तो इसलिए वो दूसरे देवी देवता के पास में जाते हैं तो उनसे प्राप्त करते हैं। काम अस्त इष्ट हो तो ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य अन्य देवता, अन्य अन्य देवता के पास जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।